तो आज का जो डिस्कशन करेंगे सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी कपल्स. देखिए हम दोनों ही अच्छे हो पति पत्नी तो भी कुछ चीजें ऐसी हमारे व्यवहार में हम नहीं ला पाते हैं जिसके कारण हमारा जो पार्टनर है पति या पत्नी है वो नाखुश रहते हैं या रहती हैं. आज हम उस परिवार की बात नहीं करेंगे या उस कपल की बात नहीं करेंगे जहां बहुत वायलेंस है. मोस्ट बहुत सारे परिवारों में पति बहुत वायलेंट होते हैं, पत्नियों को बहुत टॉर्चर करते हैं, मारते काटते हैं. हम उस फैमिली की बात नहीं करेंगे. या कहीं रेयरली पत्नी भी वायलेंट होती हैं, रेयरली नहीं बहुत केस में भी होते हैं, मे बी परसेंटेज थोड़ा कम हो, पर ऐसे भी फैमिलीज होते हैं जहां पत्नी भी पति के ऊपर बहुत जुल्म करती हैं वायलेंटली. हम उस कपल के बारे में भी बात आज नहीं करेंगे. और जहां एडिक्शन है, नशा है, अल्कोहल है, ड्रग है, वन ऑफ देम या दोनों, तो उस कपल की भी बात नहीं करेंगे. इसी तरह जहां परकीय प्रीति मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह रखते हैं, जिनका कैरेक्टर लूज है, चरित्रहीनता, उन लोगों की भी बात नहीं करेंगे. और एक प्रॉब्लम होता है कपल के बीच में, उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है फाइनेंशियल क्राइसिस. कभी पैसा बहुत कम हो, बहुत गरीबी में हो, तो भी मतलब पति पत्नी की लड़ाई का, ऐसे कपल में अगर फाइनेंशियल स्टेटस ठीक हो जाए तो उनके बहुत सारे प्रॉब्लम फिक्स हो जाते हैं. तो हम ऐसे लोगों की बात नहीं करेंगे. हम उन लोगों की बात करेंगे जो कॉमन लोग हैं, ठीक ठाक हैं, इनोसेंट हैं, कोई नशा नहीं है, कोई वायलेंस, अपनी पत्नी को पीटते नहीं, ना पत्नी पति को पीटती है, ना नशा करते हैं, ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ना कैरेक्टर खराब है. सिंपल आम लोग हैं पति पत्नी के रूप में. उसके बावजूद भी घर में अशांति रहती है, कभी कभार रहती है या कॉन्स्टेंटली रहती है. तो कुछ छोटी मोटी चीजें को अगर लाइफ में चेंज कर दें तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और ज्यादा रिलेशनशिप ज्यादा मिठास से भर जाएगा और कड़वापन कम से कम होगा. ध्यान रखिए हम वो एक्सट्रीम चीजों की बात आज नहीं करेंगे. तो इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले मनुस्मृति का एक खूबसूरत श्लोक है, मनुस्मृति का एक श्लोक है, उसको कोट करना चाहता हूं. संतुष्टो भार्यया भर्ता, भर्त्रा भार्या तथैव च, यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्. जिस फैमिली में पति पत्नी के कारण से खुश है, पति पति से खुश है, तो उस घर में खुशी जो है वो बिना कारण मिलेगी, विदाउट एनी कॉज वहां खुशी मिलेगी. बहुत सारे चीजें काम भी हो ना भी हो तो भी वो परिवार, जब ध्यान रखिए जब पति पत्नी खुश होते हैं तो दोनों खुश नहीं होते हैं, पूरी फैमिली खुशनुमा हो जाता है, पूरा घर अच्छा हो जाता है. घर में आपके बच्चे भी होते हैं और बहुत सारे जगह आपके साथ अपने पेरेंट्स भी होते हैं, बुजुर्ग पेरेंट्स भी होते हैं, वो भी खुश रहेंगे अगर पति पत्नी के रिश्ता ठीक हो. तो ये एक बेस बना करके हम आगे चर्चा करेंगे किन किन चीजों को ध्यान रखें तो एक कॉमन इनोसेंट कपल आप जैसे, तो वो जो भी थोड़ी बहुत तनाव है उसको मिनिमम हम कर सकते हैं. तो पहली चीज है कि जनरली ये एक मिसपरसेप्शन है, इसको दिखाने से पहले वो जरा क्लियर करते हैं. और मैं इसको मोस्ट ऑफ टाइम ये बोलता हूं, ऐसा नहीं कि ये कोई मेरी बातें हैं, ये तो जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उन्हीं के बात को हम कोट करते हैं, हम तो मीडिया होते हैं. ये जो प्यार से रिलेशनशिप बनता है ना, ये बड़ा बहुत ही भ्रम है, एक मिसपरसेप्शन फैला हुआ है. कभी कोई प्यार रिलेशनशिप का जड़ नहीं होता है. प्यार एक टेम्परेरी, जिसको हम प्यार कहते हैं वो एक तरह का अट्रैक्शन है, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। रिलेशनशिप को जो टिकाता है वो और बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जो इस स्लाइड में आप देखते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि प्यार नहीं करना चाहिए, प्यार एक इमोशनल चीज है। प्रॉब्लम है कि इमोशन बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, बड़ा फ्रेजाइल होता है, इसीलिए समझने की जरूरत है। क्योंकि प्यार एक इमोशन, जैसे गुस्सा 24 घंटे नहीं रह सकता, तो प्यार भी 24 घंटे नहीं रहता है, बड़ा इमोशनल चीजें हैं। अगर आपकी सब्जी में सिर्फ आलू ही आलू है और कुछ नहीं है तो आप बीमार तो होंगे ही होंगे, कुछ दूसरे सब्जियां भी आपके पास होनी चाहिए, कुछ दूसरे मसाले भी होनी चाहिए। अगर आपके रिलेशनशिप का फंडा सिर्फ प्यार ही प्यार है फिर तो खतरा बहुत ज्यादा है। तो प्यार होना तो जरूरी है डेफिनेटली, पर प्यार के अलावा बहुत कुछ और होनी चाहिए। और उसमें जो सबसे पहला नंबर पर आता है होता है एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना। आप में 0% प्यार हो पर अगर 100% म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये म्यूचुअल को कभी हटाना नहीं, क्योंकि ये पति पत्नी में जो बड़ा प्रॉब्लम होता है ये जब हम ये सिंगल लेन वाला रास्ता पकड़ाते हैं, जैसे कि आप जैसे आज डिस्कशन होगा यहां से सुनने के बाद फिर जो होगा वो वन साइडेड डिस्कशन होगा, क्या तुम ये नहीं करते हो। अब ये वन साइडेड वन ये दोनों के लिए होता है। हर चीज को आप म्यूचुअल लीजिए, म्यूचुअल बोथ। जब पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी रिलेशनशिप में वो होता है म्यूचुअल रेस्पेक्ट। जब तक पति पत्नी की दिल से रेस्पेक्ट ना करे और पत्नी पति की दिल से रेस्पेक्ट ना करे, बाकी सारी की सारी चीजें धरे के धरे रह जाएंगे। वैसे तो हम देखते हैं फैमिली चलती है, ऐसा नहीं है कि कपल्स नहीं होते हैं। वायलेंट पति है तो भी संसार चलता है, तो उसमें क्या होता है एक दबी हुई होती है, सप्रेस्ड होती है, सबको सह जाती है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और दूसरा अपना मनमानी करता रहता है। पर अगर एक खुशनुमा फैमिली देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में रियल खुशी खुशी हो, तो आपकी पति या पत्नी भी खुश होना जरूरी है और एक दूसरे के प्रति जब रेस्पेक्ट का भाव हम बना के रखते हैं, अगर नहीं है कल्टीवेट करते हैं, तो वो पहली सीढ़ी होती है रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए। और कभी भी पति या पत्नी को एक दूसरे के लिए फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है पत्नी है दो चार, इसको इसके बारे में जोक सुना दिया तो क्या हो गया सबके सामने। अगर उसको ह्यूमिलिएशन फील हुआ तो वो अगर रात उसकी अगर नींद खराब हुई तो आपके लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। या पति के मैंने दो चार डेफिशिएंसी को मजाक उड़ाया तो क्या फर्क पड़ता है। ये जो टेकिंग फॉर ग्रांटेड ये नहीं होनी चाहिए। और जहां हम रेस्पेक्ट नहीं करते हैं उस रिलेशनशिप में कभी मिठास नहीं होता है। दूर से कभी आपको लगे कि ये दोनों बड़े अच्छे कपल है, पर देखेंगे अगर रेस्पेक्ट ना करते हुए भी अच्छे कपल दिखते हैं, इसका मतलब है कि एक दबा हुआ है, चुपचाप है, सहता जाता है या सहती जाती है और कोई रीजन नहीं है। अभी 8-10-15 दिन पहले ही मुझे भी बड़ा शॉक्ड हुआ, कभी कभी पति पत्नियां का तो होते ही रहते हैं पर कभी कभी एक्सट्रीम मिल जाते हैं। तो एक कपल मेरे पास आए डिस्कशन के लिए, कोई उनके बच्चों की विवाह संस्कार वगैरह होगा, तो पत्नी थोड़ी डोमिनेटिंग है, बस थोड़ी हो तो चलती, तो इतनी डोमिनेटिंग है कि मैं भी घबराया। अब पूरे एक घंटे की डिस्कशन में पत्नी बोलती रहती है, मेरे से बात करती है, वो पति बेचारा इवन एक सिंगल वर्ड भी बोल दे, अच्छा आचार्य जी आपको कहा ना चुप बैठो। पूरे एक घंटे में मुझे लगा इसकी जो स्टेटस है वो स्लेव से ज्यादा कुछ है ही नहीं है। और वो बेचारा पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, बहुत पैसा भी है, सब कुछ है, पर एक सिंगल भला वर्ड भी, अच्छा सा वर्ड भी नहीं बोल सकता, चुप रहना है। अब ये जुलुम है। अगर वो कपल आपको कभी अच्छा दिखे इसका अर्थ नहीं कि अच्छे हैं, वो अच्छा है कि एक बिल्कुल सरेंडर कर चुका है, और ये अच्छी चीज नहीं है कि आपका पति या पत्नी दबा रहे आपसे, वो सिर्फ खुश होने के नाटक करे, क्योंकि वो फैमिली रिलेशनशिप नहीं तोड़ना चाहते हैं। देखिए, जब भी कोई दबा हुआ होता है ना, वो रिलेशनशिप को निभा रहा होता है, वो इसीलिए नहीं आवाज उठाता है या उठाती है कि रिलेशनशिप बनी रहे, और उसका नाजायज फायदा दूसरा उठा लेता है या उठा लेती है, ये नहीं होनी चाहिए। तो फिर खुशी तो नहीं हुई, ठीक है, रिलेशनशिप निभ रही है। तो पहली चीज ये कि हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना सीखें। नंबर टू, दो बर्तन, वो आम कहावत है ना, घर में दो बर्तन हो तो भी टकराते हैं, दो दोस्त रहें साथ में बात करें तो बहुत सारी चीजों में एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होती हैं, बच्चे पेरेंट्स होते हैं 500 चीजों पर डिसएग्रीमेंट होता है। ये तो पति पत्नी है, डिसएग्रीमेंट होना स्वाभाविक है, हर चीज में होना स्वाभाविक है। अगर दोनों ही किचन में खड़े हैं तो भी होगा, तेल इतना डाले कि इतना डाले, कढ़ाई ऐसी लगे कि ऐसी लगे, टूर पर जा रहे हैं सामान रखना है गाड़ी के अंदर, यहां रखें कि यहां रखें, सीधा रखें कि टेढ़ा रखें, आर्गुमेंट तो हर बात पर होगी, पर आर्गुमेंट तब झगड़े का रूप लेता है या खतरनाक रूप लेता है जब हम दूसरे की आर्ग्यू को ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि सामने वाला क्यों डिसएग्री करता है। ये बहुत जरूरी है कि पति पत्नी के रिलेशनशिप में एक दूसरे की डिसएग्रीमेंट को, असहमति को उतने ही प्यार से, उतने ही नेचुरली एक्सेप्ट करें। ये मुझे पसंद आए ना आए, मेरे सोच के हिसाब से हो ना हो, वो उनकी इच्छा है। अब किसकी चलेगी वो तो डिपेंड करता है, आगे डिस्कशन में लाएंगे कि जब डिसएग्रीमेंट हो तो किसकी चलनी चाहिए, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ईगो रिलेशन, कोई भी रिलेशनशिप हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ पति पत्नी हो, वो फ्रेंड्स हो, पति पत्नी हो, हस्बैंड बच्चे फैमिली हो, को वर्कर हो, कोई भी रिलेशनशिप में ईगो का एक ही काम होता है, वो रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करता है। जहां भी आपका ईगो रिलेशनशिप के बीच में आया, और अगर आप अपने ईगो को आगे रखते हो रिलेशनशिप के मामले में, तो रिलेशनशिप तो टूटेगी ही टूटेगी, अगर बची हुई है तो सामने वाले के कारण, दूसरे के कारण। ध्यान रखिए, जिनका ईगो बहुत ज्यादा है अगर तब भी वो रिलेशनशिप में टिके हुए हैं, इसका मतलब जो दूसरा पार्टनर है उसके कारण है। ईगो से बड़ा जहर नहीं है जो रिलेशनशिप को नष्ट करता है। इसीलिए किसी ने लिखा, ईगो में से ई हटा दो तो लेट इट गो करो तो रिलेशनशिप बड़ा इजीली आसानी से निभाया जा सकता है। अगली चीज जो जानने की जरूरत है कि ये बहुत जरूरी है कि हम प्रैक्टिकल बने। ठीक है, जब हम रिलेशनशिप में जाते हैं, पति पत्नी बनते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, नॉर्मल है, ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, मनुष्य है, आशाएं तो होंगी दूसरे से कि वो ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसे नहीं खाना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं, हजारों एक्सपेक्टेशन पाल देते हैं सिर्फ इसीलिए कि वो मेरा पति है या मेरी पत्नी है, बस इसीलिए हजारों चीजें पाल लेते हैं। पर ये बहुत जरूरी है कि हम रियलिस्टिक अप्रोच रखें रिलेशनशिप में। सब कुछ ही अच्छा अच्छा होगा, सब कुछ रोजी रोजी होगा, है ना, सनी होगा, देर विल बी नो रेनी डे, एवरी टाइम देर विल बी सनी डे, ये नहीं होता है। कभी मूड भी खराब हो सकता है किसी का, कभी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है, कभी जॉब में भी प्रॉब्लम हो सकता है, कभी घर में कोई दूसरे प्रॉब्लम भी हो सकता है, कभी बच्चों के कारण भी प्रॉब्लम हो सकता है, कभी आप में से दोनों में से किसी एक को अननेसेसरीली गुस्सा भी आ सकता है। अरे एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग है, इंसान मनुष्य है, आपको जो अननेसेसरी लगता है उनके लिए कोई रीजन होगा, अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन होगा, कोई प्रॉब्लम होगा जिसके कारण गुस्सा हमेशा, एक चीज ध्यान रखिए, मनुष्य का गुस्सा हमेशा जो दिखता है ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ टाइम हमारा गुस्सा किसी दूसरे कारण से होता है पर और कहीं निकलता है, ये बहुत जरूरी है जानना। जब भी मेरे ऊपर कोई गुस्सा करता है, मैं किसी पर गुस्सा करता हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो एक दूसरे पर गुस्सा कर रहे होते हैं, बस वहां वो एक्सप्लोड फटता है गुस्सा तो और कहीं। आप ऑफिस में ह्यूमिलिएटेड होकर के आए, वहां तो बोल नहीं सकते बॉस के सामने, पी गए। अब घर में आकर पति या पत्नी अपना समझ के सारी गुस्सा वहीं पड़ा निकाल दिया। कभी कभी बच्चे अपने माँ बाप पर निकाल देते हैं, माँ बाप बच्चों पर निकाल देते हैं, पति पत्नी पर, पत्नी पति पर निकाल देते हैं। ठीक है, होता है, ह्यूमन बींग है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना कि तुम बिल्कुल देव पुरुष या देवी बनोगे तो ये फिर कभी ऐसा होता नहीं है, और जब ऐसा होता नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर होता है। जो जो ये अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस पालते हैं, फिर उसका या तो वो मैनिफेस्टेशन होता है बड़े रूडनेस के रूप में, या अंदर अंदर वो टूटते रहते हैं। याद रखिए, लाइफ में कभी भी परफेक्शन कहीं नहीं होता है। देयर इज नॉट ए परफेक्ट पर्सन। हाँ, विवाह से पहले लड़के लड़कियां सपना देखते हैं। पूछो जो स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग लड़के लड़कियों को, कैसा लड़का चाहिए या कैसी लड़की चाहिए, वो ऐसे लिस्ट गिनाएंगे कि मतलब खत्म ही नहीं होगा, है ना। डिसेंट हो, हैंडसम हो, चार्मिंग हो, वो ह्यूमर वाला हो, पैसा भी बहुत हो, सुंदर भी हो, अच्छा मतलब लिस्ट कोई एंड भी तो है या नहीं है। यकीन मानिए, परफेक्शन कहीं नहीं होता है। और जो लोग सो कॉल्ड परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, वो अपने लिए होते हैं कि उनकी कोई भी काम हो, जो सो कॉल्ड परफेक्शनिस्ट है उसके काम को किसी दूसरे को दिखाइए, उसमें से वो 50 वो रिजेक्ट कर लेगा। वो अपने लिए परफेक्शनिस्ट होते हैं। तो रिलेशनशिप में जब पति या पत्नी परफेक्शन ढूंढते हैं कि परफेक्ट पति चाहिए या परफेक्ट पत्नी चाहिए, तो ये कभी होता नहीं है। जैसा ही पति मिला पत्नी मिला, उसी को धो सुखा करके अच्छी तरह बना लीजिए, उसी से खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। इम्परफेक्ट को एक्सेप्ट कर लेने से इम्परफेक्ट परफेक्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इम्परफेक्ट को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अपने आप वो परफेक्ट हो जाता है। आपने कभी देखा है जब एक दूसरे के प्रति किसी कारण से बहुत गुस्सा है, नहीं अब मैं उसके साथ रह नहीं सकता, रह नहीं सकती, हो गया, बहुत हो गया, दो चार दिन के लिए होता है, उस समय आपको पूछो इस आदमी में या इस महिला में क्या अच्छी चीज है, लगा जीरो, एक भी कोई अच्छी चीज नहीं है। अरे गुस्सा शांत हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए, घूमने चले गए कहीं वैकेशन में, मूड बढ़िया ठीक है, पूछो वो दर्जनों अच्छाइयां गिनाएंगे। तो जब कहीं इम्परफेक्शन दिखे तो समझ लेना कि मेरे अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है। आप अगर इम्परफेक्शन दिखे तो परफेक्शन को याद करें कि मेरे स्पाउस में पार्टनर में क्या क्या अच्छाइयां हैं। जब आप लिस्ट बनाएंगे देखेंगे 90% से ज्यादा अच्छाइयां हैं। जब हम अपने पति या पत्नी से चिढ़े हुए हैं क्योंकि इस ये गलतियां करता है या गंदा है या खराब है, उस समय अगर कोई आप एक दिमाग में या कागज में लिस्ट बनाओ क्या क्या उसमें अच्छाइयां है, आप काउंट करके थक भी जाओगे, खत्म नहीं होगा। तो फोकस हो सकता है, जब आप गुस्से में होते हैं तब आप याद ना रहे क्या अच्छाई की, तब हमें सारी बुराइयां दिखता है। पर अगर ये कॉन्स्टेंटली चलता है कि मेरा पति या पत्नी वैसा नहीं मिला जैसा मैंने सोचा था शादी से पहले, तो फिर एक कागज में लिस्ट बना के रखो, जब अच्छा मूड हो, क्या क्या अच्छा है ये, क्या क्या करता है या करती है अच्छे। जब बुरा टाइम आए, नेगेटिव माइंड आए, उसको एक बार देख लें, अब देखेंगे 70% आपका डाउन हो जाएगा। हाँ, अगर आप पक्का मन बना रखें कि इसको छोड़ना ही है, फिर बुरे मूड में सारी बुराइयां नोट करके रखें, जब अच्छे मूड हो तो उसको पढ़िए, फिर देखिए जल्दी अलग हो जाएंगे। पर हम तो बात कर रहे हैं रिलेशनशिप निभाने की, तो अगर रिलेशनशिप को खुशनुमा बनाना है तो अच्छी चीजों को दिमाग में नोट करिए, अगर दिमाग काम नहीं करता है कभी कभार तो कागज में नोट करिए। वैसे कागज में नोट करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में भी ध्यान रखिए, फोकस करिए। अच्छाइयां सब में होती है, बुराइयां सब में होती हैं। जब ज्यादा बुराई देखने लगे तो हमें अच्छाई की ओर जाने की जरूरत है। दूसरी चीज होती है, अभी बात कर रहे थे किस कौन डोमिनेट करेगा, किसकी चलेगी। स्ट्रांग रिलेशनशिप में दोनों स्ट्रांग पर्सनालिटी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों डोमिनेटिंग नेचर का हो तो भी रिलेशनशिप अच्छी चल सकती है, बस एक उसमें करेक्शन करने की जरूरत है। क्या? एक टाइम पर एक ही डोमिनेट करेगा या करेगी, तो दिन में सूरज की चले, रात को चांद की चले, तब तो चलेगा। सूरज कहे नहीं 24 घंटे मेरी है तो भी प्रॉब्लम है, चांद कहे नहीं 24 घंटे मेरी है तो भी अंधेरा ही अंधेरा होगा। जब पत्नी सूरज बन जाए, गुस्से में लाल पीला हो, तो पति चांद बन जाए, कोमल बन जाए, ठंडा बन जाए, लेट हर डोमिनेट। अगर पति अभी सूरज बना हुआ है, बिल्कुल गर्म, गर्मी के मौसम का, बिल्कुल दोपहर 12 बजे का, तो पत्नी चांद बन जाए, बस उतने देर के लिए। ये भी एक मिसपरसेप्शन है कि दो स्ट्रांग डोमिनेटिंग नेचर वाले लोग साथ नहीं रह सकते, रह सकते हैं अगर ठीक अंडरस्टैंडिंग हो। और ठीक अंडरस्टैंडिंग क्या, कि जब किसी आर्गुमेंट में एक जीत जाए, उसकी चले, तो दूसरे आर्गुमेंट में दूसरे की भी चलने दो। तो जब किसी समय एक सूरज बनता है, एक विवाह के मंत्रों में एक मंत्र भी आता है, बड़ा खूबसूरत मंत्र, उसमें वो पति पत्नी को, मतलब जो ग्रूम है वो ब्राइड को कहता है कि मैं सूरज, हम दोनों में से एक सूरज है एक चांद है, हमारी रिश्ता कैसी हो जैसे सूरज और चांद की है, हमारी रिश्ता कैसी हो जैसे जैसे द्यूलोक आकाश और पृथ्वी हो, हमारी रिश्ता कैसी हो जैसे आग और पानी हो। ध्यान दीजिए, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, पर रिश्ता निभाने में माहिर है, संसार इसी से चलता है जी। सपोज सूरज ना हो, खाली चांद ही चांद हो, संसार नहीं चल सकता, अंधेरा होगा, इतनी कम लाइट में थोड़े ही जिंदगी चलेगी। पर अगर 24 घंटे दिन ही दिन हो, सूरज ही सूरज हो, तो भी मुश्किल है, रेस्ट कैसे लेंगे, दिमाग ठंडा भी करना है, नहीं चलेगा। पर शर्त है कि जब सूरज का टाइम हो तो चांद सरेंडर कर ले, जब चांद की टाइम हो तो सूरज सरेंडर कर ले, फिर देखिए मजे की मजे ही मजे। जब आप आपस में ये कोऑर्डिनेशन हो, ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग करके कोऑर्डिनेशन है, ये नेचुरली अगर इवॉल्व हो जाए कि सामने वाला आज दोपहर के 12 बजे का सूरज बना है तो मैं रात के 12 बजे बन जाऊं, फिर देखेंगे प्रॉब्लम कितना इजीली आप सट आउट कर पाते हैं। दूसरे को चेंज करने की एक्सपेक्ट करना थोड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, क्योंकि पत्नी को या पति को लगता है कुछ चीजें तो चेंज होने की जरूरत है, देखो ऐसे खाता है, ऐसे बैठती है, ऐसे करती है, ठीक है आपको जो चीजें अच्छा नहीं है चेंज करो, ट्राई करो, शुरू शुरू में ट्राई करो, 2 साल 4 साल 5 साल कर लो जितनी करनी है, जहां तक रबर खींच सकते हो, पर ज्यादा खींचना नहीं, जितना चेंज कर सकते हो तो कर लो, अच्छी बात है, पर 5-7 साल के बाद फिर नहीं, फिर तो मुश्किल है। मेरे पास एक कपल आए, मुझे वो पति शायद 80s की होंगे, 80 से अबव है, पत्नी भी ऑलमोस्ट वही है, दोनों ढंग से चल नहीं पाते हैं, पर लड़ाई ऐसी होती है कि बिल्कुल वो एक तरफ राम एक तरफ रावण हो। तो पहले पति देव आए, कभी कभार आते हैं संडे को भी, ये ऐसी पत्नी है, ये है वो है, तो पत्नी भी एक दिन आ गई तो सुनाया, क्या प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि पति देव जी के कुछ बुरी आदतें हैं। अब बुरी आदतें क्या हैं कि वो बहुत ज्यादा मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। अब बुरी आदतें क्यों, क्योंकि पत्नी को ये पसंद नहीं है, अर्थात पढ़ते पढ़ते ठीक है, उसको वो फेंकते नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की आदत है कि नहीं काम आएगा कभी, अब इंटेलेक्चुअल लोग जो होते हैं वो कभी कभी संभाल के रखते हैं कभी काम आएगा, वैसे कभी काम आता नहीं है ऐसी चीजें, पर वो नेचर होता है, और इतना रखा है कि उनका एक रूम भर चुका है। और ये लड़ाई कब से चल रही है, जब से शादी हुई है तब से। पत्नी छोड़ी नहीं चेंज करने के लिए, अब पति चेंज ना होने का भी छोड़ा नहीं, 80 साल के हो चुके हैं और 2-4 साल 5 साल, क्योंकि बहुत फिजिकली भी वो इतने फिट नहीं है, अब पता नहीं कितने दिन जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो हेल्दी है, पर अभी भी इतनी भयानक लड़ाइयां होती हैं कि घर में 2-2 3 दिन के लिए खाना नहीं मिलता। पति कहीं भाग जाता है, पत्नी भी कहीं, अब मेरे सामने भी उस दिन इतने गुस्से में हुए कि पत्नी उठ के कहीं पति गुस्से में उठ के भाग गया, और पत्नी गाड़ी चलाना नहीं जाती है, 2-4 घंटे तक बैठी रही, पति का गुस्सा ठंडा हुआ फिर लेकर गई, 80 साल के ऊपर के हैं। तो मैंने कहा ठीक है होने दो, इस साल इतने साल तक तो हो गया, अब क्या अभी लड़ाई ना, बच्चे इनके कारण घर नहीं आते हैं क्योंकि घर गंदा होता है, ये होता है, अब मैंने जो समझाया समझाया अलग बात है, पॉइंट ये है कि आप चलो आपका विवाह हुआ 25 आज से 50-60 साल पहले विवाह हुआ होगा, अगर 80-85 साल के हो गए तो 25-30 में तो शादी हुई होगी, 40-45 साल 50 साल की शादी है, आप 50 साल से कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स कर रहे हो उस व्यक्ति को चेंज करने के लिए, और वो चेंज नहीं हो रहा है, पर आप छोड़ नहीं रहे हो, और उससे होता है क्या है, सिवाय क्लेश के, सिवाय एक दूसरे की लड़ाई के फाइटिंग के, मैं इनको ये भी नहीं बता सकता कि आप अलग हो जाओ, अब 80-85 साल में क्या अलग होंगे। अलग होंगे जाएंगे क्या, फिजिकली तो फिट भी नहीं है, पर छोड़ नहीं रहे, लड़ाई चल रही है, भूखे भी रह रहे हैं, टेंशन से भी जी रहे हैं, पर चेंज करने की जो ठानी है वो बंद नहीं हो रही है। देवियों सज्जनों, अपने पति या पत्नी को चेंज करना बंद कर लीजिए, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, जितना थोड़ी देर के लिए कुछ समय के लिए तो ठीक है, उसके आगे तो ये कोई पति बदलने वाला नहीं, कोई पत्नी बदलने वाली नहीं, थोड़ी बहुत अगर जिसको बदलना होता है 2-4 साल में बदल जाएंगे, क्योंकि तब भी आप यंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, तब तब इमोशनली भी आप प्यार प्यार की बात करते हैं, तो थोड़ी बहुत आपके प्यार के चक्कर में थोड़ा बदल जाए, उसके बाद कौन बदलता है, बदलती भाई कोई नहीं बदलता, बस आपका एफर्ट्स ही करते रहते हैं, फालतू की लड़ाइयां बढ़ती रहती है। और 2-3 चीजें, कभी कभी हम इतने ज्यादा मैकेनिकली लड़ाई करते हैं, मतलब रोबोटिक वे में, हाईस्कूल बच्चों की तरह, मतलब छोटी छोटी चीजों को लेकर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग करते हैं, कभी तो अपने मायके और ससुराल को लेकर के, अब वो घर में जिंदा हो मर गए तो भी लड़ाई करते रहते हैं, आपसे 10,000 माइल दूर पर हैं तो भी उनके नाम पर लड़ते रहते हैं, मेरी माँ मेरी बहन मेरे भाई, तुम्हारे माँ तुम्हारे बाप तुम्हारे भाई, ऐसे थे ऐसे थे वैसे वैसे। तो ये बचकानी लड़ाइयां होती हैं, बच्चे लड़ते हैं हाई स्कूल के बच्चों की तरह। दूसरी चीज होती है किसी एक ही सेम चीज को हर आर्ग्यूमेंट में, जब भी झगड़ा हो हर बार वो सेम चीज को उठाकर लाना, उस पुरानी चीज को रिपीट करना। अगर पति या पत्नी में से किसी ने कोई गलती पहले कर दी या कोई इश्यू ऐसा था, उस पास्ट इश्यू को हर डिस्कशन में, हर आर्गुमेंट में, हर बहस में रिपीटेडली लाने से, सिवाय एक दूसरे के प्रति कड़वापन कुछ देर तक रहने का और कुछ नहीं होता। पास्ट इश्यूज को डेलिबरेटली भूलना जरूरी है। अगर डिबेट करते समय वो चीजें याद भी आते हैं तो उसको गले तक कैसे भी करके रोकने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही वो पास चीजें दोबारा वापस आते हैं और वो जितनी बार रिपीटेडली आते हैं, सामने वाला इतना इरिटेट होता है, कोई भी हो, पति पत्नी दोनों के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि पुराने चीजों को बार बार ना कुरेदे, शुरू में एक दो बार कर लिया बस, जितना उससे फायदा उठाना है, सामने वाले को नीचा दिखाना कर लिया, अब डन करो, अब उसमें कंट्रोल हो जाना चाहिए। और ये जरूर ध्यान रखें, जब हमारे आर्गुमेंट होते हैं या बहस होते हैं या डिबेट करते हैं, अगर घर में बच्चे हैं तो हम बच्चों को क्या इनडायरेक्टली एग्जांपल्स मैसेज देते हैं। बच्चों की दो तरह के, बच्चे तो बोलते नहीं, ये चुपचाप रहते हैं, वो बच्चा छोटा बच्चा हो या हाई स्कूल गोइंग हो या कॉलेज में पढ़ता हुआ बच्चा हो या इवन 25-30 साल का हो जो अभी तक मैरिज नहीं किया है, उसको रिलेशनशिप के प्रति नफरत होने लगता है या नेगेटिविटी आने लगती है। उसमें बहुत सारी चीजें भी हो सकते हैं, या तो वो रिपीट करता है या बिल्कुल चेंज हो जाता है या रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहता है। तो कम से कम पति पत्नी ये जरूर ध्यान रखें, जब आपस में हम किसी भी कारण से लड़ें, बच्चों के सामने लड़ें और लड़ें भी ऐसे तरीके से लड़ें कि फ्यूचर रिलेशनशिप क्या हो। एक बच्चा, हमारे बच्चा मतलब मैं 5-7 साल के बच्चे की नहीं कह रहा हूं, वो बच्चा 5 साल को हो या 25 साल का या 30 साल का, माँ बाप के लिए तो बच्चे हैं, वो जब अपना फ्यूचर रिलेशनशिप को देखें और आपको उसके साथ कंपेयर करें, वो क्या इमेजिन करें कि मेरे रिलेशनशिप कैसी होगी। बच्चे को ये मैसेज कॉन्स्टेंटली जाना चाहिए फ्यूचर रिलेशनशिप में, लव और अफेक्शन, प्यार अपनापन जरूरी है। वो पति पत्नी के कितने भी गर्मा गर्म बहस हो, उसमें वो जो मर्यादा राम की, जो पता है ना श्री राम क्यों प्रसिद्ध है, मर वो कितने भी गुस्से में राम हो, वो कुछ मर्यादा कभी नहीं लांघते थे, हमेशा एक एक एक, एक मेंटेन करते थे सर्टन लिमिटेशन। पति पत्नी खास करके जब पास में अपने बच्चे हो, वो बड़े बच्चे हो या छोटे बच्चे, उस मर्यादा को ना लांघें, जिससे कि बच्चे अपने फ्यूचर रिलेशनशिप को पॉजिटिवली देख सकें। दूसरी चीजें, नेवर बी ए काउंटर। काउंटर समझते हैं, वो काउंटर आर्गुमेंट नहीं, काउंट करना। पति पत, अब आप कहेंगे ये क्या चीज है, सब करते हैं, मैंने इतने काम किए हैं, देखो बर्तन मांजा, खाना बनाया, ये किया, वो तुमने क्या किया, है ना। अच्छा मैंने ये कंप्यूटर में बैठ के ये काम किया, ये किया, ऑफिस का काम किया, ये बिल जमा किया, वो किया, तुमने क्या किया। जब हम एक रिश्ता बनाते हैं या एक परिवार बनाते हैं, उसमें बहुत तरह के काम होते हैं। बहुत काम इनविजिबल होते हैं, कुछ काम विजिबल होते हैं। कौन कितना काम करता है वो सही है, आप ज्यादा करते होंगे, पर अगर आप इसको गिनाते हैं, इससे सिवाय आप अपने नेगेटिव ईगो को सेटिस्फाई करने के अलावा और कुछ नहीं प्रूव करते हैं। इससे रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं होता है, इससे कोई भी रिलेशनशिप में मिठास नहीं आता। जब भी आप काम गिनाते हैं, इसका अर्थ नहीं कि सामने वाला कुछ नहीं करता है, सामने वाले और ऐसे बहुत सारे काम करता होगा जो आपको नहीं दिखता है। मैंने कितने बार रात को बच्चा जब रोया, मैं कितने बार उठा, तुम कितने बार उठी, कितने बार तुमने उसकी कपड़े बदला, मैंने कितने बार बदला, सुबह कितने बार मैं जल्दी उठ के बच्चे को तैयार किया, तुमने कितने बार तैयार किया, वगैरह वगैरह। कभी भी रिलेशनशिप में इवननेस लाने की कोशिश नहीं करना। एक आपको और पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो। एक यंग कपल आए शादी करने से पहले, और वो जो लड़का है उसको ज्यादा ही इक्वालिटी की पढ़ाई पी रखा, इक्वालिटी की जूस पी रखा था, और इतना ज्यादा पी रखा था, उसने मुझे कंडीशन आते ही बोला कि वो विवाह संस्कार में जो कुछ भी होगा सब बराबर होगा, मतलब जितने मंत्र मैं पढ़ूंगा उतनी वो पढ़ेगी। जो कुछ आप मेरे से कराएंगे वो सब उससे होनी चाहिए। मुझे पता चला बाद में, बच्चे तो हिंदू हैं, आप वो अपने घर में देखते होंगे कि पापा काफी डोमिनेटिंग होंगे, अपनी मां की चलती नहीं होगी, तो बाद में थोड़ी ये आजकल इक्वालिटी की जो सो कॉल्ड एक जैसे एक फेमिनिज्म का एक रियल फेमिनिज्म है, एक एक्सट्रीम फेमिनिज्म है, इसी तरह वो कुछ एक्सट्रीमली इक्वालिटी के जूस पी रखा था, हर चीज बराबर होगा। तो उसकी मां ने भी पहले मुझे फोन करके बताया, मेरे बेटे ने कहा कि वो इक्वालिटी के फेवर में है और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि उसका ज्यादा हो जाए, उसकी जो ब्राइड है उसका कम हो जाए। मैंने कहा ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, पर मैं बात करूंगा। तो मैंने उसको पूछा, तो फिर आप उतनी ही रोटियां खाते हो जितनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड खाती है, मैं कल तुम्हें एक्स्ट्रा भूख लगे ढाई रोटी खाने की, अब तुमने तुम्हारी पत्नी ने अगर डेढ़ रोटी में ही बंद कर लिया तो तुम्हें भी डेढ़ रोटी खा के बंद करनी पड़ेगी, भाई इक्वालिटी भी रखनी है। बाथरूम में तुम नोट करोगे पत्नी कितने समय गई, तुम भी उतने ही समय जाओगे, 5 मिनट तो 5 मिनट, दैट्स नॉट कॉल्ड इक्वालिटी। ये स्टुपिडिटी है, ये बेवकूफी है। और रिलेशनशिप में इस तरह की इक्वालिटी नहीं चलती है जी। अच्छा आपने 4 रोटियां बनाई, ओके ठीक है मैं भी 4 रोटी कल बना दूंगा, ऐसे नहीं चलता। कल आप किसी काम दूसरे काम में बिजी होंगे तो कर लेंगे। किसी को कुछ चीजें अच्छा लगता है, कोई किसी चीज को सीरियसली लेता है, कोई कैजुअल है, हर व्यक्ति के अपनी अपनी एटीट्यूड है, हर व्यक्ति के इंटरेस्ट अलग है, हर कोई एक जैसे काम को नहीं कर सकता, बराबर नहीं कर सकता, और बराबर करने वाले कभी फ्रेंड्स भी नहीं होते, फॉरगेट अबाउट पति एंड पत्नी, ये तो सिर्फ ऑफिस में झगड़ालू को वर्कर्स होते हैं। किसी भी ऑफिस में जो जो जेलेस को वर्कर्स होते हैं ना, वो ऐसा ही काम करते हैं, भाई मैंने ये 5 कर लिया बाकी नहीं करूंगा, उसको भी 5 करने दो, मैं क्यों करूं, तनख्वाह दोनों का एक ही है सैलरी, मैं क्यों ज्यादा करूं। फ्रेंड्स में भी ये नहीं चलता। जब प्यार होता है, जब अफेक्शन है, जब अपनापन है, मैं आगे बढ़ के कोई चीज 10 भी कर सकता हूं, वो किसी दूसरे काम को 25 भी कर सकता है। काउंट मत रखिए, इवननेस होना जरूरी नहीं है। कोई 100 कर ले तो कर ले, आप कोई दूसरा काम 150 कर लेते हैं, और जब हिसाब गिनाते हैं ना तो फिर रिलेशनशिप नहीं होती है, वो तो फिर बिजनेस होता है। जहां भी आप काउंटिंग रखते हैं रिलेशनशिप नहीं होती है। हाँ, ये जरूरी है कि मिलजुल के काम करें, ये जरूरी है कि एक दूसरे का ख्याल रखिए, ये जरूरी है कि ये मेक श्योर करिए कि आपका पति या पत्नी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड ना हो, आपके लिए बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस ना करे, ये भी जरूरी, ये ध्यान रखिए। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हर चीज को आप रोटी को दो टुकड़ा करके बांट के खाएंगे। ये काउंटिंग करने की नेचर बंद करना बहुत जरूरी है। इसी तरह जैसे पहले हमने एक बार जाना कि चेंज करने की कोशिश कम करो या मत करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि चेंज करने की कोशिश करना कोई बुरी बात है, हमारे हम ही अगर चेंज नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बहुत सारे पुरुष सुधरे हुए हैं क्योंकि उनके पत्नियों ने उनको सुधारा है, मतलब उनके कपड़े पहन के सेंस और बहुत सारे, हमें वो कपड़े भी कैसे पहनेंगे पत्नियां डिसाइड करें, ठीक है। कुछ चीजें किसी कुछ लोगों में नहीं होता है तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, दैट्स ए गुड थिंग, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। पर जैसे कहा कि एक्सट्रीमली मत जाएं, इसी तरह अगर आपकी पति या पत्नी में कोई चेंजेस आता है उसके लिए शक करना डाउट करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। अगर वैल्यूज एथिक्स मोरल्स ये सेम है, फिर पति या पत्नी कैसा भी चेंज करे तो टेक इट इजीली। ये तीन चीजें बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, वैल्यूज एथिक्स मोरलिटी। मतलब मैं जानता हूं अगर आप 50-60 साल के एज में अचानक आप जवान की तरह होने दिखने लगने कोशिश करने लगे तो लगता है कि दाल में कुछ काला होने वाला हो रहा है, तो नेचर में कुछ वो आने लग गया है, वो तो ठीक है। पर ये तब ठीक है अगर उसकी वैल्यूज में मोरालिटी में कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं है तो फिर आप उसको अलाउ करें, वो चेंज अच्छा होता है। हाँ, चेंज तब तक अच्छा है अगर वो कंप्रोमाइज नहीं करता है अपनी नैतिकता में, जो राम की जो मर्यादा है ना, जिसको वैल्यूज एथिक्स मोरालिटी है, अगर इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है आपके पति या पत्नी के द्वारा तो चेंज होने दो, चेंज होना अच्छा है। मोनोटोनी खत्म होती है, लाइफ बदलता रहता है। ये मत कहिए कि विवाह के समय जैसा था अब तुम ऐसा नहीं रहे या जैसी थी अब नहीं रहे, ठीक है। समय के साथ विचार बदलता है, सोच बदलता है, चीजें बदलती रहती हैं, टेक इट इजीली। ये जरूरी नहीं है कि पति या पत्नी के पहला सेंटेंस जरूरी है, पति या पत्नी के कुछ चीजें म्यूचुअल होना अच्छा जरूरी है, मतलब दोनों के कुछ चीजें मिलना जरूरी है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। कुछ चीजों में एक जैसा इंटरेस्ट एक जैसा हवी हो अच्छा है। पर अगर तुम्हारे लाइफ में सारी जितने भी तुम्हारे हॉबीज हैं इंटरेस्ट हैं जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है सब अगर एक दूसरे के हिसाब से बनाओ वो अच्छी चीजें नहीं है। कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि पति या पत्नी के उनके कुछ अपने ऑब्जेक्टिव खुशी हो, उनकी हॉबीज कुछ ऐसे भी हो जो दोनों से अलग हो। ये अलग होना खराब नहीं है, उल्टा अच्छा है। पति और पत्नी के कॉमन फ्रेंड्स होना जरूरी है, पर अगर आपके अपने इंडिविजुअल फ्रेंड नहीं है तो अच्छी चीज नहीं है। आपके भी अपने फ्रेंड्स होना चाहिए जो आपके पति के नहीं है, आपके पति के भी कुछ फ्रेंड्स होना चाहिए जो आपके पत्नी के फ्रेंड्स नहीं है। दोनों के कॉमन फ्रेंड्स भी जरूरी है, कुछ इंडिविजुअल फ्रेंड्स भी जरूरी है। कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन होता है, ऐसी स्टेट ऑफ माइंड होता है कि हम ना अपने स्पाउस से शेयर करना चाहते हैं ना कॉमन फ्रेंड से शेयर करना चाहते हैं। उस समय आपको मेंटल जो स्ट्रेस है एंग्जाइटी है उसकी रिलीज होती है जब आपके इंडिविजुअल फ्रेंड से आप शेयर करते हैं जिसका आपके पति या पत्नी से कोई लेन देन नहीं है। इसी तरह बहुत सारे हॉबीज या इंटरेस्ट है, कुछ इंटरेस्ट हॉबीज अगर अलग अलग हो अच्छा है, उससे एक दूसरे के प्रति ट्रैक्शन बना रहता है, सेपरेट इंटरेस्ट या हॉबी से रिलेशनशिप खराब नहीं होती है। कुछ इंटरेस्ट हॉबी अच्छा एक जैसा हो अच्छा है, तो दोनों में एक बैलेंस होने की जरूरत है। इसी तरह वेद में बड़ा सुंदर मंत्र आता है, उस मंत्र का अर्थ होता है, दोनों पति पत्नी बोलते हैं, विवाह में भी आता है कि तुम भी मेरी दिल को सुनो, मैं भी तुम्हारे हृदय को सुनो। पति पत्नी में यही तो प्रॉब्लम है ज्यादातर, हमेशा बहुत सारे आइडियल पति पत्नी भी होते हैं, तो जो आइडियल है मैं उनको वो उसको अपने दिल पर मत लें, मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है, हम सब कर लेते हैं, सुनने को ही तैयार नहीं है, है ना। अब खास करके जब आप कभी पति पत्नी के आर्गुमेंट को देखिए, कभी कभी दोनों सेम ही चीज बोल रहे होते हैं पर तभी लड़ाई हो रही होती है। क्यों? दूसरे का नहीं सुनना, बस अपना बताना, वो अपना बताए मैं अपना बताऊं, फाइटिंग चलती रहती है। कोई तीसरा आकर सुने तो बताए आप दोनों फाइटिंग क्यों कर रहे हो, आपकी लैंग्वेज अलग अलग है, तरीका अलग है, बता तो सेम रहे हो पर एक दूसरे को सुने ध्यान से तब ना। अच्छे रिलेशनशिप के लिए सुनना बहुत जरूरी है, बोलने से ज्यादा सुनना। जो कम बोलता है वो रिलेशनशिप के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जो ज्यादा सुनता है वो रिलेशनशिप के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ध्यान रखिए। और अगर कहीं डिस्कशन में कोई डिसएग्रीमेंट हो, कंप्रोमाइज भी कर लीजिए, उसको कंप्रोमाइज नहीं कहेंगे, उसको सरेंडर कहेंगे। मतलब एक अपनापन के कारण आप कुछ चीजें छोड़ देते हैं, आप स्पेस दे देते हैं। रिलेशनशिप में कंप्रोमाइज करना एक अच्छी चीज होती है। आप दुनिया में और कहीं कंप्रोमाइज करें ना करें, पर रिलेशनशिप में जो कंप्रोमाइज करता है वो फर्स्ट हैंड रहता है, ऊपर रहता है, और ईगो पाल के जो बैठता है वो नीचे रहता है, ध्यान रखिएगा। कंक्लूड करेंगे, टाइम हो रहा है। जो व्यक्ति खुद खुश नहीं हो ना, वो दूसरों को क्या खुश रखेगा, नहीं हो सकता। कोशिश, हर इंडिविजुअल इंडिविजुअली खुश रहना सीखें। कैसे खुश रहेगा वो उसका इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, उसमें स्पाउस कुछ नहीं कर सकता। हमें कोशिश करने की जरूरत है कि जब मैं खुश रहूंगा तो नेचुरली मैं खुश दिमाग में मेरे पत्नी के साथ जो व्यवहार होगा या बच्चों के साथ, परिवार दूसरे परिवार के दूसरों के साथ, वो उनको भी मैं खुश रख सकता हूं। दुखी आत्मा दूसरों को कभी खुश नहीं कर सकता। जो बहुत रूड है वो दूसरों को पोलाइटनेस नहीं सिखा सकता। जो खुद हमेशा दुखी रहता है, खड़ूश है, वो दूसरों के लाइफ में कभी खुशी नहीं ला सकता, वो रिलेशनशिप पति पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी हो। इसीलिए खुद इंडिविजुअली खुशी ढूंढें, आप खुद खुश रहना सीखें, तब दूसरों को आप खुश रहेंगे। अगर आपके लाइफ में इंडिविजुअली खुशी नहीं है कि क्योंकि आप खुश रहना, मोस्ट ऑफ टाइम बहुत सारे लोग खुश इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुश रहना ही नहीं चाहते, विक्टिम बनने में ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो विक्टिम हुड से बाहर निकले, अपने आप को खुश रखें, खुश रखने के लिए जो चाहिए करें, फिर देखेंगे रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाता है। विवाह के कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे जो लोग लव मैरिज करते हैं या अरेंज मैरिज करते हैं, दोनों सिचुएशन में, लव मैरिज में मैरिज से पहले बढ़िया फ्रेंडशिप होती है, अरेंज मैरिज में विवाह के 2-4 साल तक बढ़िया फ्रेंडशिप होती है, आगे जाकर दोनों बराबर हो जाते हैं। दोनों अलग अलग रास्ते में आते हैं पर आगे सेम ही रास्ते में पहुंच जाते हैं। फ्रेंडशिप को की जो 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 नेचर है उस की जो टेस्ट है, उसकी जो अरोमा है, उसको रिलेशनशिप में जरूर डालें। आपको पता है हिंदू विवाह में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रिचुअल होता है वो है सप्तपदी। सप्तपदी मतलब सेवन स्टेप्स, जब साथ साथ दूल्हा और दुल्हन, वर और वधु साथ साथ सात स्टेप्स लेते हैं। आजकल सप्तपदी को बिगाड़ के सात फेरा कर लोग कर देते हैं, इट्स अ सप्तपदी। पता है वो सप्तपदी का बेसिक पर्पस क्या था? टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। और उसकी जो हर पाद, जो हर स्टेप है, वो एक पर्पस के लिए लेते हैं। उसके लिए एक मंत्र होता है कि हम ये स्टेप इसके लिए लेते हैं। जो लास्ट और जो सातवां सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, कहते हैं हम लेते हैं सखी, सखापन के लिए, मित्रता के लिए, दोस्ती के लिए, फ्रेंडशिप के लिए। आप 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, 90 साल के हैं, या अभी अभी न्यूली मैरिड हैं, वो जो फ्रेंडशिप की जो 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 अरोमा है उसको बना के रखें। उससे बहुत सारे प्रॉब्लम, अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। जब पति पत्नी होते हैं तो एक पोस्ट होता है, पावर, एक्सपेक्टेशन। मैं पति हूं या मैं पत्नी हूं, पत्नी हूं ये तुम्हारी ड्यूटीज हैं पति के, मैं पति हूं ये तुम्हारी ड्यूटीज हैं। जैसे ऑफिस में आपकी पोस्ट होता है ना, हर पोस्ट के कुछ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन। पति पत्नी में नेचुरली ये आ ही जाता है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं। पर जब आप उसमें वो फ्रेंडशिप वाला थोड़ा अरोमा रखेंगे, इनपुट रखेंगे, तो रिलेशनशिप में जब भी कटुता आएगी, वो जो दोनों के प्रति एक जो मित्रता का भाव है वो उसको मिनिमाइज कर लेगा। बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम भी बड़ी इजीली सॉल्व हो सकता है। अब मित्रता आती कैसी है? म्यूचुअल, अंडरलाइनिंग है म्यूचुअल, म्यूचुअल डिवोशन एंड म्यूचुअल कमिटमेंट। डिवोशन वर्ड को दूसरे तरह का मत लीजिएगा। परमात्मा या अपने से बड़ों के प्रति जब आप एक्सट्रीम प्यार करते हैं, उसको हम भक्ति कहते हैं। अपने बराबर के प्रति जब हम उसी प्यार को करते हैं, उसको हम प्रेम कहते हैं। तो दोनों ही डिवोशन है। अपनी पार्टनर, पति या पत्नी के प्रति फुली डिवोटेड हो जिए। जैसे आप अपने माँ बाप के प्रति, भगवान के प्रति डिवोशन रखते हैं, इसी तरह एक दूसरे के प्रति भी डिवोशन रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिवोशन का मतलब उनके अब वो माथा टेक करके प्रणाम करिए, मतलब फीलिंग, इमोशंस को उसी तरह बनाइए। और कमिटमेंट एक दूसरे को खुश रखने की, उसने मुझे कितनी खुशी दी, अगर इसी को काउंट करते रहे जिंदगी भर आप दुखी रहेंगे। आप 50 बार शादियां बदलेंगे तब भी खुश नहीं रह सकते। पर मेरे कारण मेरे पत्नी या पति कितना खुश होता है, अगर यह काउंट किया तो आपकी लाइफ में खुशी ही खुशी होगी। अगेन इट शुड बी म्यूचुअल। पति की चिंता होनी चाहिए मेरे कारण पत्नी खुश है कि नहीं, पत्नी की चिंता होनी चाहिए मेरे कारण पति खुश है कि नहीं। हमने शुरुआत मनुस्मृति में जिस श्लोक से की थी, अगेन वही, जहां पति पत्नी के कारण से खुश हो, पत्नी पति के कारण से खुश हो, वो घर स्वर्ग बन जाता है। और कंक्लूड करेंगे, आपको पता है हिंदू ट्रेडिशन में एक कंसेप्ट है, क्या है? अर्धनारीश्वर, है ना? ध्यान रखिए, अपनी पार्टनर को अलग मत समझो। रिलेशनशिप की पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है, अपनी पति या पत्नी को अपने लाइफ का आधा समझो। जैसे तुम्हारे शरीर में किसी भी अंग में पेन हो तो पूरे शरीर को पेन होता है, किसी भी अंग में खुशी है तो पूरे बॉडी को खुश होता है। इसी से जब मेरा आधे को दर्द हो तो वो दर्द में बाकी आधे को भी होता है। मेरे आधे को अगर खुशी होती है तो बाकी आधे को भी खुशी होती है। ये जो अर्धनारीश्वर, मैं अगर मैं पति हूं मेरी आधी पत्नी है, मैं अगर पत्नी हूं मेरा आधा पति है। जब आप सचमुच इस अर्धनारीश्वर की ये जो माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को अपने पति या पत्नी के साथ आप जोड़ दें, फिर देखिए रिश्ता कैसे होता है। आई होप आपका जीवन भी इसी तरह सुखमय दाम्पत्य से भरा हो, इसी के साथ विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।